एक और एतराज़ हम सब लोगों में देखते हैं फेसबुक पे, जो दीन इस्लाम से बेजार लोग होते हैं, करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम जो है वो खौफ का मज़हब है। मसलन सूरज और चांद ग्रहण आम वाकयात हैं जिनकी एक साइंसी तौजीह जो है वो पेश की जाती है, जिसको 5 साल का बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लम ने इस मौके पर कि जबकि सूरज ग्रहण हो रहा हो या चांद ग्रहण हो रहा हो, मुसलमानों को नमाज अदा करने का कहा है, तो गोया ये तो एक ऐसी सूरत हाल है कि एक खौफ की बात की जा रही है। पता नहीं अब होगा और इसके नतीजे में कोई कुछ कोई धमाका हो जाएगा, क्या है। तो ये तो आम साइंसी मामलात हैं, इन मौाक़ों पर नमाज पढ़ने के लिए क्यों उभारा गया है?
ये कब मालूम हुआ कि ये साइंसी मामलात हैं? यानी ये तो अभी चंद बरसों पहले की बात है कि हम ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें, और इससे पहले भी बाज़ लोगों ने कुछ अंदाज़े लगा लिए थे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इंसानी उलूम है, यानी ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को भी मालूम था जब वो पैदा होते। इंसानों ने दुनिया पर गौर किया, ये जानने की कोशिश की कि तगैयुरात कैसे आते हैं, तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, मौसम कैसे बनते हैं, वो ये सारे मामलात करते रहे। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ये कोई साइंसी तहकीक नहीं अभी हुई थी कि सूरज ग्रहण कैसे होता है, चांद ग्रहण कैसे होता है। इस आलम में एक तगैयुर वाक़ हुआ, तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह महसूस फरमाया कि मेरी बेइज्जत हो चुकी है, मैं खुदा का पैगंबर हूँ। ये आसमान पर अगर एक तगैयुर हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पहले जिन कौमों पर बड़े बड़े अजाब आए हैं, कोई अजाब है जो हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से या मेरी कौम पर भी आ सकता है। उसके अंदेशे से आपने लोगों से कहा कि अल्लाह से मदद मांगो, लेकिन साथ ही ये बता दिया कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, नमूदार होती रहती हैं, और ये भी बता दिया कि ना इस पर किसी की मौत असरअंदाज होती है, ना जो अवहाम तुमने पैदा किए उनकी कोई हकीकत है। कोई भी तगैयुर दुनिया में जब आएगा तो अगर उसकी कोई साइंसी तौजीह हमारे इलम में नहीं है, तो उस तगैयुर के मौके के ऊपर एक साहिब ईमान शख्स यही करेगा, उसको यही करना चाहिए कि ये अगर तगैयुर आ रहा है, कोई तब्दीली आ रही है, तो इस तब्दीली के पसपर्दा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो अल्लाह ताला की नाराज़ी का बायस बन गई है और उसके नतीजे में हो सकता है कि कोई बड़ा इकदाम हो जाए। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, गुजर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक जलजला आता है और एक हद से बढ़ जाता है और उसके बाद इमारतें गिर जाती हैं, लोग भी मरते हैं, बुरा हाल हो जाता है। आप जानते हैं अभी तुर्की में हाल में क्या हुआ, खुद हमारे मुल्क में क्या हुआ। तो ऐसे तमाम मौक़ों पर जब इस कायनात में कोई तगैयुर आएगा, तो एक खुदा तरस आदमी, अल्लाह से डरने वाला आदमी, दुनिया में जो कुछ अल्लाह के कवानीन हैं उनका इलम रखने वाला आदमी, तो यही करेगा कि वह अल्लाह से माफ़ी मांगेगा कि मेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए। तो हुजूर ने बिल्कुल वही काम किया जो एक बंदा मोमिन को करना चाहिए। ना पैगंबर साइंसदान होते हैं, ना साइंसी तौजीहात करना उनका काम होता है, ना इसके बारे में मालूमात फराहम करने के लिए वो आते हैं, ना उस वक्त ये कोई साइंसी इलम मौजूद था जो अरबों को भी मालूम था और उसमें हुजूर ने कोई दूसरा रवैया अख्तियार किया। इस तरह के तगैयुरात कभी कभार होते हैं, चूँकि आपके ज़माने में हुआ और आप अल्लाह के रसूल थे और रसूल की हैसियत से आपको ये मालूम था कि जब हुज्जत पूरी हो जाती है तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब का फ़ैसला होता है, और मदीना में आने के बाद तो हर घड़ी इसका इम्कान मौजूद था कि कब आपकी कौम के बारे में इस तरह का कोई फ़ैसला हो जाए। चुनाचे इसका अंदेशा आप आम हालात में महसूस करते थे, कभी आंधी आ जाती थी तो उसमें भी यही चीज़ महसूस करते थे। तो ये पैगम्बर के मौजूद होते हुए जो अल्लाह का कानून है अज़ाब का, उसका अंदेशा है। इसका कोई ताल्लुक चांद सूरज ग्रहण से नहीं है कि उसकी आपने कोई तौजीह फरमाई है या उसके बारे में कोई ख़ास तालीम दे दी है, इस तरह की कोई चीज़।
ठीक है, सर, नुकता आपने वाजी किया। तो फिर आज के दौर में मिसाल हमें पता है कि तो एक साइंसी तगैयुर के नतीजे में चांद ग्रहण सूरज ग्रहण हो रहा है, तो आज हम जब नमाज़ पढ़ेंगे तो वो भी हमारे ईमान का इजहार होगा ना कि हमें तो अल्लाह ताला ने रोशनी दी हुई है, लेकिन अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल हो गई है तो हम अल्लाह से एहतियाज रखते हैं इस बात की कि जल्द से जल्द टले ताकि हम नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकें।
जो कुछ भी आप दुनिया में करते हैं, ज़ाहिर है कि शुक्राने के नफल पढ़े जाते हैं। कोई आफत, कोई मुसीबत आ रही हो तो उस मौके पर अल्लाह की तरफ रुजू किया जाता है, तो आपके इल्म के लिहाज से होता है। आज जो आपका इल्म है, नौयत तब्दील हो जाएगी। देखिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में एक आयत है, हर सूरा के शुरू में लिखी गई है। मैंने अपनी तफसीर में ये बताया है कि कुरान में इसका एक महल है, और वो क्या है? वो महल ये है कि अल्लाह के नाम से पैगम्बर ये कुरान पढ़ कर सुनाओ, यानी वहाँ जो फेल मुकद्दर है वो इस मफहूम का है, इसको पढ़ कर सुनाओ अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है। वहाँ ये है, मैं जब खाना खाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूँ तो क्या वहाँ पर भी उसमें यही चीज़ मुकद्दर होती है? نہیں وہاں یہ مقدر ہوتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کا شکر ہے اور میں اللہ ہی کے نام سے اس کی ابتدا کر رہا ہوں, اللہ اس میں برکت پیدا کرے. تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے فہم میرے موقع کے لحاظ سے اپنا مدعا تبدیل کرتی ہے. یہی صورتحال یہاں بھی ہوگی. اس وقت یہ معاملہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر موجود ہے, پیغمبر کی موجودگی میں ہر گھڑی قرآن یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. تو ہر آنے والا تغیر یہی احساس پیدا کرے گا اور ہونا چاہیے یہ احساس. آج کے زمانے میں ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آئے گا. یا چاند گرہن یا سورج گرہن اس قانون کے مطابق ہو رہے ہیں, وہ ہم نے دریافت کر لیا. تو اس میں جو پہلو آپ نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم دو رکعتیں پڑھ لیں گے. یہ تو ہمارے دین میں تعلیم دی گئی ہے, یعنی آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے, آپ کو کوئی اچھی خبر ملی ہے, آپ نے محسوس کیا کہ کوئی برا پہلو ہے, کوئی بیماری آ گئی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ, یعنی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نماز کے ذریعے سے اس کی مدد مانگتے ہیں. تو حضور نے اپنی قوم کے معاملے میں نماز کے ذریعے سے مدد مانگی ہے کہ پروردگار اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ میری قوم کے اوپر بھی پہلے پیغمبروں کی قوموں کی طرح کوئی آفت آنے والی ہے تو میں اللہ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں.